वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी उपचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कल हमने पहले स्कंद पहले अध्याय के तीन चैप्टर्स पहले स्कंद के तीन अध्याय कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नारद मुनि और व्यास देव से व्यास नारद व्यास संवाद, इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो कल के रिकैप में जस्ट हम एक बार देख सकते हैं, कल हमने मेनली डिस्कस किए थे जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे और उन 6 प्रश्नों के उत्तर श्री सुत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में दिए थे। और अभी ये चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। सुत गोस्वामी बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है और श्री व्यासदेव ने इसको कंपाइल किया था और श्री व्यासदेव स्वयं भी भगवान के अवतार है। श्री व्यासदेव भगवान के पराशर मुनि के पुत्र हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा है और श्री व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को महाराज परीक्षित को सुनाया। और ये भागवत पुराण एक सूर्य के समान ब्रिलियंट है और भगवान कृष्ण के इस संसार से जाने के तुरंत बाद इस श्रीमद् भागवतम पुराण का इस संसार में अवतरण हुआ है। और कलव नष्ट दशा में शाम, कलयुग में अंधकार के कारण जिन लोगों ने अपनी दृष्टि को खो दिया है, ये श्रीमद् भागवतम पुराण उनको एक नई आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करेगा। तो ये ऑलमोस्ट तीसरे अध्याय का एंड हुआ था भागवत पुराण की ग्लोरीज बताने के साथ। और इसके बाद फिर चतुर्थ अध्याय में श्री सुत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं कि जब ये श्रीमद् भागवतम बोला जा रहा था उस समय मैं उपस्थित था और मैंने इस श्रीमद् भागवतम को बहुत ध्यान से सुना और मेरे गुरु की कृपा से इस श्रीमद् भागवतम को मैं पूरी तरह से समझ सका और अभी मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको बताने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से मैंने उसको सुना था और समझा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है ये कि यथाधीतम यथामति, इस तरह से आता है उस श्लोक में। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते भी हैं कि रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने जो अपने अथॉरिटी से सुना है उसको जीवन में अप्लाई करें, उसको रियलाइज करें और फिर उसको प्रेजेंट करें। उसमें कुछ भी अपने मन से ऐड करना या सब्स्ट्रैक्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे श्री सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने भागवत जिस प्रकार से अपने गुरु से सुना था उसी तरह से मैं आपको सुनाऊंगा और जिस प्रकार से मैंने रियलाइज किया था उसी तरह से मैं आपको रिलेट करने का प्रयास करूंगा। जब इस प्रकार से सुत गोस्वामी बताते हैं तो शौनक ऋषि जो कि 88,000 ऋषियों में सबसे प्रमुख है, शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से बताते हैं और कुछ और प्रश्न पूछते हैं। वो 6 प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए, अभी ये कुछ और प्रश्न पूछते हैं और शौनक ऋषि पूछते हैं कि ओ सुत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, किस प्रकार से व्यास देव ने इस भागवत को लिखा और उनको कैसे इस भागवत को लिखने का इंस्पिरेशन मिला, कहाँ से इस भागवत पुराण को लिखने का इंस्पिरेशन मिला और क्यों उन्होंने इसको कंपाइल किया, ये प्रश्न उन्होंने पूछे। और साथ साथ सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुखदेव गोस्वामी को प्रशंसित किया कि सुखदेव गोस्वामी तो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार पूर्ण व्यक्ति थे, यद्यपि वो एक पागल व्यक्ति के समान संसार में घूमते थे परंतु वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे। जब वो आए तो उनको हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे रिसीव किया और कैसे परीक्षित महाराज उनको मिल सके, ये प्रश्न था। और किस प्रकार से उन दोनों की भेंट हुई और श्रीमद् भागवतम बोला गया, और साथ साथ उन्होंने प्रश्न किया परीक्षित महाराज के बारे में भी कि परीक्षित महाराज तो भगवान के फर्स्ट क्लास भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि भगवान उनके जन्म के पहले ही भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए थे, इतने महान भक्त थे परीक्षित महाराज। तो और साथ साथ परीक्षित महाराज पूरे प्रैक्टिकली पूरे संसार के राजा थे और इतने महान थे कि उनके शत्रु भी उनको आके उनके चरण चरणों में प्रणाम करते थे। तो इतने महान परीक्षित महाराज को अपने धन दौलत को छोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी, और क्यों उन्होंने अपना पूरा सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे जाके बैठ गए? और कोई बोल सकता है कि वो अपने शरीर से आसक्त नहीं थे, इसलिए सौनक ऋषि बोलते हैं ठीक है भले ही वो अपने शरीर से आसक्त नहीं थे, परंतु उनका शरीर तो पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण था। इतने महान क्षत्रिय राजा होने के कारण पूरा संसार शांति से भरा हुआ था, तो भी परीक्षित महाराज ने उस शरीर को, जो शरीर पूरे संसार की शोभा था, उस संसार को शरण प्रदान कर रहा था, उस शरीर को उन्होंने क्यों छोड़ा, किस तरह से छोड़ा? तो ये प्रश्न थे। एक प्रश्न तो था श्रीमद् भागवतम कब क्यों किस प्रकार से बोला गया, इसका इंस्पिरेशन कैसे मिला, और दूसरा प्रश्न था परीक्षित महाराज की हिस्ट्री के बारे में, परीक्षित महाराज ने अपना शरीर क्यों छोड़ा, ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम थे जिसके कारण परीक्षित महाराज ने अपना शरीर छोड़ा। और इन दो प्रश्नों के उत्तर में पूरा फर्स्ट कैंटो सुत गोस्वामी सुनाते हैं, स्टार्ट करते हैं वो भागवतम की हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद आता है। उसके बाद सातवें अध्याय से प्रारंभ होकर परीक्षित महाराज के जन्म के पहले, जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, उस समय से लेकर परीक्षित महाराज के भागवतम सुनने तक की पूरी कथा को ये सुत गोस्वामी सुनाते हैं पहले स्कंद। तो ये दो प्रश्न थे जिनके आधार पर अगले 16 अध्यायों में इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। सुत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं कि ये अभी जो युग चल रहा है ये वैवस्वत मनु, सातवें मनु में 28वां चतुर्युग है। ब्रह्मा के हर दिन में 71 मनु हो, ब्रह्मा के हर दिन में 14 मनु होते हैं और हर मनु में 71 पीरियड्स होते हैं। और इस पर्टिकुलर जो जो 5000 साल पहले जो कलयुग और द्वापर युग की जो संध्या थी, इस पर्टिकुलर समय में युगों का परिवर्तन होता है। सामान्यतः किस प्रकार से युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। परंतु इस पर्टिकुलर चतुर्युग में त्रेता युग पहले आता है, कलयुग और द्वापर युग बाद में आता है। उसका कारण यह है कि भगवान कृष्ण आके द्वापर युग में अपनी लीलाओं को बताते हैं और उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं कलयुग में और कृष्ण लीला गोलोक वृंदावन में जाने का तरीका बताते हैं। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण द्वापर में आते और उसके बीच में त्रेता युग आ चुका होता तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बीच का समय जो है बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए सामान्यतः जो सीक्वेंस है उसमें द्वापर पहले आता है, त्रेता बाद में आता है। परंतु इस बार, मतलब इस युग में, इस चतुर्युग में, केवल इसी चतुर्युग में ऐसा होता है कि द्वापर बाद में आता है, त्रेता पहले आता है। भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के इस संसार में आने के कारण ये चेंज किया जाता है भगवान के द्वारा। और इस द्वापर युग की तीसरी संध्या में श्री व्यासदेव का जन्म हुआ था, सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र के रूप में। व्यासदेव जो है सम्यक रास बद्रिकाश्रम जाते हैं, तो बद्रीनाथ के आगे, बद्रीनाथ के पास में व्यास गुफा है, वहां पे सम्यक रास में श्री व्यासदेव का आश्रम था। एक बार सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद श्री व्यासदेव ध्यान करने के लिए बैठते हैं और ध्यान में वो देखते हैं कि कलयुग में किस प्रकार से लोगों का भाग्य बहुत डिस्टर्ब होगा, लोगों की मेमोरी बहुत डिस्टर्ब होगी, कलयुग के लोगों का सब कुछ वो देखते हैं, उनका ह्रास भागवत में आता है क्षय, किस प्रकार से उनकी वाणी का, उनके शरीर का, उनके मन बुद्धि का क्षय होगा। और व्यासदेव समझ जाते हैं कलयुग के लोग बहुत ज्यादा मूर्ख होंगे और उनमें ज्यादा दिमाग भी नहीं होगा। ये हम सभी की क्वालिटीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। नॉर्मली कलयुग के लोग सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं वैसे वैसे हमें कि हम बहुत मॉडर्न हो गए। और श्रील व्यास देव बताते हैं कलयुग के लोग थर्ड क्लास मतलब फोर्थ क्लास है, सतयुग के बाद रिजेक्ट होके द्वापर युग, द्वापर के बाद रिजेक्ट होकर त्रेता युग, त्रेता युग के बाद रिजेक्टेड माल जो है वो कलयुग में। तो श्री व्यास देव ने देखा कि कलयुग के लोगों में कोई इस प्रकार से श्रद्धा भी नहीं होगी, और फिर व्यास देव ने सोचा कि वेदों का ज्ञान जो है वो कलयुग के लोगों को देना सॉल्यूशन है। और इस मेथड को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने एक वेद, सबसे पहले केवल एक वेद था, और उस वेद को उन्होंने चार भागों में डिवाइड किया। और ऋग्वेद, इन चार वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भगवद गीता में हम देखेंगे कुछ कुछ श्लोकों में आता है ऋग्, साम, यजुर्वेद, वचा, तीन इस तीन वेदों के नाम आते हैं। चौथा वेद जो अथर्ववेद है उसका नाम नहीं आता है। ओरिजिनली एक ही वेद था, उसमें से चार को डिवाइड किया गया और चारों को व्यास देव ने अपने अपने शिष्यों को सिखाया। ऋग्वेद को पायल ऋषि को सिखाया, सामवेद को जैमिनी को सिखाया, यजुर्वेद को वैशंपायन, अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि। और ये ऋषि मुनियों ने अपने अपने शिष्यों को ये वेद सिखाए, और उसके बाद व्यासदेव ने पुराणों की रचना की और वेदों के ऊपर कमेंट्री जो कि वेदांत सूत्र है उसकी रचना की। पुराणों के बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो महाभारत और रामायण की, महाभारत की रचना करते हैं, हिस्ट्री, क्योंकि उनको लगता है कि कलयुग में ज्यादातर लोग वेदों को और वेदांत सूत्र को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो पुराण के साथ साथ इतिहास की रचना करते हैं, महाभारत की रचना करते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण के बारे में भी बताते हैं, परंतु इतना सब करने के बाद भी श्रील व्यासदेव अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते। अपने मन में वो सोचते रहते हैं बैठ के कि मैंने वेदों की शरण अच्छे से ली है, आध्यात्मिक गुरु की शरण भी प्राप्त की है, और यज्ञ भी मैंने किए हैं, सारे नियमों को भी मैंने पालन किया है, और धर्म के सिद्धांतों को भी मैंने अच्छे से फॉलो किया है, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने आप को संतुष्ट प्रतीत नहीं फील नहीं कर रहा। और चूंकि श्री व्यासदेव स्वयं भी भगवान के अवतार हैं, तो व्यासदेव जब बहुत डीपली सोचते हैं तो सोच के वो समझ जाते हैं कि मैंने स्पेसिफिकली भगवान को अभी तक ग्लोरीफाई नहीं किया है, भगवान को संतुष्ट नहीं किया है, और भगवान के प्रति भक्ति जो होती है उस भक्ति को मैंने प्रचार नहीं किया। और जस्ट ये विचार उनके मन में आता है उसी समय उनके आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि वहां पे उपस्थित होते हैं, और नारद मुनि आके, जैसे कि नारद मुनि को ये देखते हैं श्री व्यासदेव, और उनको उनका स्वागत करते हैं, तो नारद मुनि उनको एड्रेस करते हैं। नारद मुनि ऑलरेडी, क्योंकि इसी अध्याय में बताया गया है कि नारद मुनि जो है वो भगवान के समय भगवान के समान सभी लोगों के हृदय को समझ सकते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं। तो नारद मुनि जान गए थे कि व्यासदेव के मन में क्या चल रहा है, कि किस लिए व्यासदेव असंतुष्ट हैं, और नारद मुनि स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ओ पराशर के पुत्र। एक्चुअली नारद मुनि पहले टीज करने का प्रयास करते हैं, हालांकि उनको कारण पता है, परंतु वो तब भी व्यासदेव के मुख से सुनना चाहते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, ओ पराशर के पुत्र, क्या आप किसी व्यक्ति को उसके मन, शरीर, बुद्धि इससे आइडेंटिफाई करके संतुष्ट हैं? आपने तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, और आपने महाभारत में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया भी है, वेदों के बारे में बताया है, सब कुछ आपने महाभारत में बताया है, आपने वेदांत सूत्र भी दिया है, और वेदांत सूत्र के द्वारा आपने पूरे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति का जो एक्सप्लेनेशन है वो सब कुछ बताया है, परंतु आप असंतुष्ट क्यों हैं? इस तरह से बोल के नारद मुनि स्माइल करते हुए ये बोलते हैं, और नारद मुनि के स्माइल को देख के श्री व्यासदेव को समझ में आ जाता है कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनके हृदय में सब कुछ जानते हैं। और व्यासदेव रिप्लाई करते हैं कि हे गुरुवर, आपने जो बोला है वो परफेक्टली ठीक है, यद्यपि मैंने बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं, परंतु तब भी मैं संतुष्ट नहीं, और चूंकि आप तो अनंत ज्ञान को जानते हैं, आप सभी के हृदय में भी जो है आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बताइए कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। नारद मुनि के बारे में एक यहाँ पे विभिन्न विशेषण आता है जो कि श्री व्यासदेव उपयोग कर रहे हैं। व्यासदेव बताते हैं कि आप सभी जीवों के हृदय के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसी बातें समझ सकते हैं जो संसार में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आप परमात्मा के समान शक्तिशाली। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई बार नारद मुनि को भगवान बोला जाता है। नारद मुनि वास्तविकता में भक्ति के अवतार भी हैं, भक्ति प्रदायिनी अवतार भी हैं। इसीलिए हमने देखा था 30वें अध्याय में नारद मुनि का डिस्क्रिप्शन आया था 22 अवतारों में, ये जो भक्ति प्रदान करते हैं। तो श्री व्यासदेव नारद मुनि की शरण लेते हैं और नारद मुनि फ्रेंकली डांटना चालू करते हैं। डांटना इन द सेंस, क्योंकि नारद मुनि आध्यात्मिक गुरु हैं तो अपने शिष्य की गलती को बताने का उनका पूरा अधिकार है। और नारद मुनि क्लियरली बताते हैं कि आपने भगवान कृष्ण की भक्ति का, भगवान कृष्ण की ग्लोरीज को ब्रॉडकास्ट नहीं किया है, और कोई भी फिलॉसफी जो कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं करती है या जो भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं करती है वो फिलॉसफी यूजलेस बोली जाती है। नारद मुनि बताते हैं कि इवन आत्म साक्षात्कार की जो फिलॉसफी है, अगर वो भगवान अच्युत के लिए समर्पित नहीं है या भगवान अच्युत को वो संतुष्ट नहीं करती है तो फिर वो भी किसी कार्य की नहीं है। नारद मुनि बहुत फेमस श्लोक बताते हैं, ये दो श्लोक बहुत फेमस हैं। नयद्वचश्चित्त पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायसम तीर्थमुसंति मानसा नयत्रहम साम निर्मन्त्यु शिक्षयः। ये 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, 5वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है। ये श्लोक बताता है, नारद मुनि बताते हैं, नयद्वचश्चित्त पदम हरिर्यशो, ऐसी वाणी, ऐसा डेकोरेशन जो कि भगवान हरि, भगवान विष्णु के यश का गुणगान नहीं करता है। भगवान विष्णु जो है जिनके गुणगान करने से ही जगत पवित्र हो जाता है। अगर कोई ऐसी वाणी या ऐसा कोई डेकोरेशन या ऐसा कोई काव्य भगवान विष्णु के यश का गुणगान नहीं करता है तो उस काव्य की तुलना किससे की जाती है? तद वायसम तीर्थम उसंती मानस, वो एक कौवे के बैठने के स्थान के समान है। हम सभी जानते हैं कौवा हमेशा गंदी जगह पर बैठता है, जहां भी डस्ट होती है, डर्ट होती है या गंदी जगह होती है। आप पूरे फूलों के बगीचे में देखिए, कहीं भी जहां पे सुगंध होगी वहां पे कौवा नहीं होगा, जहां पे गंदगी होगी कौवा वहां जाके बैठता है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जिस जिस वाणी के द्वारा, जिस काव्य के द्वारा भगवान विष्णु, भगवान हरि के यश को नहीं गाया जाता है, वो काव्य एक्चुअली कौवे के तीर्थ स्थल के जैसा है, दैट मीन्स डस्टबिन के जैसा है, यूजलेस वस्तु के समान है, और वहां पे हंस कभी नहीं जाते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार में हमेशा दो प्रकार के लोग होते हैं, हंस के जैसे और कौए के जैसे। और कौआ और हंस एक दूसरे से एकदम अलग अलग होते हैं। हंस हमेशा स्वच्छ जगह पे जाते हैं, कौए हमेशा गंदी जगह पे जाते हैं। और इसके अगले श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, तद्वा विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति विनन्ति साधवः। बता रहे हैं कि तद्वाग विसर्गो जनता विप्लव, इसके विपरीत ऐसा ऐसा शास्त्र, ऐसी वाणी जिसमें भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई किया गया हो, वो एक अलग ही क्रिएशन होता है। और अगर ऐसा शास्त्र अच्छे से नहीं कंपाइल किया गया हो, इन द सेंस उसमें अगर कोई मिस्टेक भी हो या जो स्पीकर है उसका हो सकता है इंग्लिश या संस्कृत या भाषा उतना अच्छा कमांड नहीं हो, तब भी उस शास्त्र को संसार के संत जो हैं वो सुनते हैं, गाते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र भगवान कृष्ण के गुण को ग्लोरीफाई करता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम की हर पुस्तक में शुरू में लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं तो भारतीय हूँ और मैं इन भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो भले ही मैं कितना भी प्रयास करूं परंतु कुछ ना कुछ गलती तो रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में भी मातृभाषा नहीं है। और प्रभुपाद जी बताते हैं इसी श्लोक के दम पे बताते हैं कि जब कभी इमरजेंसी होती है तो इन सब चीजों को नहीं देखा जा सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर मान लो किसी के घर में आग लगती है और उसका पड़ोसी हो सकता है वो भाषा नहीं जानता, परंतु इस व्यक्ति के हाव भाव को देख के वो समझ जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है। तो प्रभुपाद बताते हैं इसी तरह से श्रीमद भागवतम का प्रचार बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। पूरे संसार में अगर भागवत का प्रचार नहीं किया गया पूरा संसार डूब जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि हो सकता है मेरी इंग्लिश राइटिंग में मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें। नारद मुनि ने भी ये बताया है कि ऐसा शास्त्र जिसमें भगवान के गुणों का गान किया गया है, हो सकता है वो ठीक से कंपाइल नहीं किया गया हो, परंतु तभी भी साधु लोग उसको श्रवणवंती मतलब सुनते हैं, गायंती मतलब गाते हैं, गृणंती मतलब स्वीकार करते हैं। इसके बाद नारद मुनि बताते हैं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम नसो भते ज्ञानम अलम निरंजनम, कि आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है वो भी अगर भगवत भक्ति से विहीन है, भगवान कृष्ण की भक्ति से विहीन है, भगवान कृष्ण की भक्ति उसमें नहीं दी गई है, तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का कोई मतलब नहीं, तब फिर संसार का जो भौतिक कर्म है उसका क्या मतलब, उसका तो कोई पूछना ही क्या है। तो नारद मुनि इसने क्लियरली बताया इन श्लोकों के द्वारा कि अगर आपने हालांकि बहुत सारे शास्त्र लिखे परंतु भगवान विष्णु को आपने एक्सक्लूसिवली ग्लोरीफाई नहीं किया और इस कारण से आप संतुष्टि फील नहीं कर रहे, जब तक आप भगवान विष्णु की को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, उनको प्रशंसित नहीं करेंगे, तब तक आपको संतुष्टि फील नहीं होगी। और साथ साथ उन्होंने डांटा भी कि आपने तो पुराणों में और वेदों में कर्म कांड लिखा कि किसी मनुष्य को ये इच्छा हो तो देवताओं के पास जाए, यज्ञ करे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। तो हालांकि आपने अच्छे के लिए किया, परंतु लोगों को हमेशा भोग करने की इच्छा होती है और भोग करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा पाई जाती है कि उस इच्छा के कारण वो जो लाइसेंस दिया गया है या जो ऑब्जेक्टिव है वो भूल जाते हैं और भोग करने लगते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि इस तरह से तो आपने उनको भगवान के पास भी नहीं जाने दिया और कर्म कांड में डुबा दिया। तो ये तो उनके जीवन के लिए बहुत, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं हुआ। नारद मुनि बता रहे हैं यू शुड हैव लेड द मासेस ऑफ पीपल टू द पाथ ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, इसके बजाय आपको ये कर्मकांड नहीं देके भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को लेता है वो कभी भी लूजर नहीं होता है, परंतु अगर कोई शुद्ध भक्ति के अलावा बाकी सब चीजें लेता है तो उसको कोई फायदा नहीं है इस संसार में। उसके बाद एक और फेमस श्लोक बताते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरे जब भजन अपक्वोत पते ततो यदि यत्र क्वा भद्र अभूत मुस्य किम को वाच आप तो भजताम स्वधर्मतः। ये जो श्लोक हम रिसाइट कर रहे हैं ये श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप लोग लिख सकते हैं और इवेंचुअली इनको याद कर सकते हैं। कौन कौन से श्लोक हमने आज डिस्कस किए? 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, 11वां श्लोक, 12वां श्लोक और 17वां श्लोक, 10, 11, 12 एंड 17 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये नारद व्यास संवाद के। जब हम ये डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने इन श्लोकों के बारे में बताया था। तो नारद मुनि ने प्रैक्टिकली डांटा कि आपने ये कर्मकांड लिख के अच्छा नहीं किया, आपने भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहिए था श्रीमद् भागवतम के द्वारा, और साथ साथ भक्ति की महत्ता को भी नारद मुनि बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त का पतन हो जाता है तो उसके लिए कुछ लूज नहीं है, वो लूजर नहीं होता है, क्योंकि उसने जितनी भी भक्ति की है वो भक्ति उसको फिर से भक्ति में लेके आएगी अगले जन्म में। इसलिए भक्ति करने से कभी भी कोई व्यक्ति कोई लूज नहीं करता, परंतु अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करे तो वो सब कुछ करने का प्रयास करेगा, तब भी मृत्यु के बाद वो कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाएगा। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति इतनी ज्यादा ग्लोरियस है कि भक्त कभी भी कुछ चीज लूज नहीं करता है। इसलिए हे व्यासदेव, अभी आप भगवान की लीलाओं पे ध्यान करिए और फिर आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जो कि भगवान की लीलाओं को बहुत डिटेल में बताएगा, जिससे कि संसार के लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करके भगवान की लीलाओं का ध्यान करके भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। और संसार के महान महान साधु मुनियों ने बताया। संसार के महान महान साधुओं और ऋषियों ने बताया है कि वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, नाम करना, जप करना, ये सब कुछ हमें अल्टीमेटली भगवान की शुद्ध भक्ति तक ले जाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव के जैसे कार्य करते हैं। और जब नारद मुनि ने शुद्ध भक्ति की ग्लोरीज को बताने का प्रयास किया और ये भी बताया कि किस प्रकार से भक्ति किसी भी स्तर से व्यक्ति को उठा के एडवांसमेंट की तरफ लेके जा सकती है, तो उसको बताने के लिए नारद मुनि ने अपनी खुद
शिवम प्रभु, मेरी आवाज आ रही है?
यस प्रभु, आ रही है।
ओके ओके, तो जब इस प्रकार से नारद मुनि ने भक्ति के प्रयास, भक्ति की ग्लोरीज को बताया कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकता है, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी को सुनाया कि किस प्रकार से नारद मुनि स्वयं शुद्ध भक्ति को भक्तों के संग में प्राप्त किए, भक्तों शुद्ध भक्तों का कारण नारद मुनि को भी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हुई। और नारद मुनि की स्टोरी श्रीमद् भागवतम में दो स्थानों पे आती है, एक तो इस कैंटो में, पहले कैंटो में, और दूसरे नारद मुनि की स्टोरी आती है सातवें स्कंद में भी। तो ये दोनों स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सातवें स्कंद में जब आएगा तो हम फिर से शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ पे दोनों स्टोरी हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि ब्रह्मा के पिछले दिन में, ये ध्यान रखना होगा, ये नारद मुनि की स्टोरी ब्रह्मा के इस दिन की नहीं है या पहले मनु की नहीं है, ये पिछले दिन की स्टोरी है। ब्रह्मा के पिछले दिन में मैं एक बहुत छोटा सा पुत्र, एक नौकरानी का एक पुत्र था, और ये नौकरानी जो थी अलग अलग लोगों के घरों में कार्य करती थी। तो एक बार चातुर्मास के सीजन में, चातुर्मास नॉर्मली बरसात के सीजन को चातुर्मास बोला जाता है क्योंकि इस सीजन में बारिश होने के कारण साधु संत कहीं भी गमन नहीं करते थे, क्योंकि पहले साधु संत केवल जंगलों में चलते थे अपने पैरों से। आजकल ये नियम इस तरह से नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन के साधन अवेलेबल हैं, परंतु पहले के समय में साधु पुरुष जहां भी जाते थे तो चातुर्मास, चार महीने वो एक जगह पे रुकते थे, बरसात जब चलती थी तो एक जगह पे रुकते थे। तो एक बार इस चातुर्मास के सीजन में कुछ महान वैष्णव ब्राह्मण के विद्यालय में आए और वहां पे इनकी माँ जो थी वो सेवा करती थी, और इनकी माँ को उन ब्राह्मणों की सेवा करने की, ब्राह्मण वैष्णव जो थे उनको सेवा करने का मौका मिला। सामान्यतः ये जो वैष्णव हैं, कई कुछ जगह पे लिखा है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, परंतु भागवत में इनका नाम नहीं आता है, श्रीमद भागवतम में इनका नाम नहीं दिया हुआ है। नारद मुनि बता रहे हैं कि चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा करती थी इसलिए मुझे भी मौका मिला उनकी सेवा करने का। और ये जो वैष्णव थे यद्यपि अपने नेचर में बहुत इम्पार्शियल थे, परंतु तब भी चूंकि मैं छोटा छोटा बालक था इसलिए उनने मेरे ऊपर कृपा की। और नारद मुनि बताते हैं कि यद्यपि मैं छोटा था परंतु मेरी इंद्रियां नियंत्रित थी, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था और मैं छोटे बच्चों जैसे खेल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये एक श्लोक आता है, पांचवें अध्याय का ये श्लोक है, 22 या 24 नंबर श्लोक है, उसमें नारद मुनि बताते हैं कि मैं छोटे बच्चों के समान खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था, मेरी इंद्रियां नियंत्रित थी। तो ये देख के ये जो वैष्णव थे ये बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद मुनि पर कृपा की। और एक बार नारद मुनि ने उनकी परमिशन से उनका जो भोजन का बचा हुआ अन्न था वो ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव का जो जूठन होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। वैष्णव का जूठन, वैष्णव के चरण की धूल और वैष्णव के चरण को धोया हुआ जल, ये तीन वस्तुएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। और किसी को अगर ये मिलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का जो बचा हुआ अन्न होता है उससे व्यक्ति को शुद्ध शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो नारद मुनि यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक बार उनकी परमिशन से मैंने उनके भोजन का बचा हुआ अन्न स्वीकार किया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नारद मुनि ने उनसे परमिशन ली और जब उन्होंने बोला तब उन्होंने स्वीकार किया। और तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों का जो भोजन है वो लिया जा सकता है, परंतु कोशिश करना चाहिए कि उनको इस प्रकार से फील नहीं हो, क्योंकि अगर हम किसी के सामने उसका जूठन स्वीकार करते हैं तो कोई भी वैष्णव को खराब लगता है, तो उनको इस प्रकार से फील नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इट कैन बी टेकन इवन विदाउट परमिशन, परंतु उनके सामने लेने से बचना चाहिए जिससे उनको एम्बरासमेंट फील नहीं हो। तो नारद मुनि ने इन वैष्णवों की परमिशन से उनके भोजन का रेमनेंट्स ग्रहण किया और उसके कारण उनके सारे के सारे पाप तुरंत खत्म हो गए। और ऐसे महान भक्तों की सेवा करने के कारण ऑटोमेटिकली नारद मुनि के लिए भक्ति करना बहुत आकर्षक होने लगा। और ऐसे वैष्णवों के संग में उन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुना और लगातार भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुनते सुनते भगवान कृष्ण के प्रति वो आकर्षण होने लगे और भगवान कृष्ण अटेंटिव होने लगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए और उनका टेस्ट बढ़ने लगा। और जब ये भगवान कृष्ण के प्रति रुचि उनकी बढ़ने लगी तो भगवान के प्रेम के प्रति उनको आसक्ति हो गई और धीरे धीरे नारद मुनि इतनी छोटी अवस्था में भी उनको रियलाइज हो गया कि अज्ञानता के कारण उन्होंने इस शरीर को स्वीकार किया है, वास्तविकता में वो आत्मा है, ये उनको रियलाइज हो गया छोटे 5 साल की उम्र में। नारद मुनि उन शुद्ध भक्तों को अपने गुरु के समान मानते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो जब ये 4 महीने खत्म हुए और बारिश का सीजन खत्म हुआ, उसके बाद भक्ति वेदांत जब चले गए तो नारद मुनि बहुत दुखी हुए और इन्होंने उससे पूछा भक्ति वेदांत से कि कैसे उनकी अनुपस्थिति में वो भक्ति करेंगे। तो भक्ति वेदांत ने उनको गाइडेंस दिया और इंस्ट्रक्शन दिया और फिर नारद मुनि उनसे सीखे कि किस प्रकार से सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। और श्रील व्यासदेव, तो यहां तक नारद मुनि ने स्टोरी सुनाया। उसके बाद नारद मुनि ने व्यासदेव से बोला कि ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी एक तरह से पूरी हो गई थी कि उनको वैष्णवों की कृपा मिली, वैष्णवों का जूठन मिला, उससे उनकी भक्ति बढ़ गई। तो नारद मुनि यहाँ पे बोल के शांत हो गए और फिर बोला कि इसलिए आप भी अभी भक्ति के बारे में बताइए। पर अभी व्यासदेव पूछते हैं, क्योंकि व्यासदेव स्टूडेंट हैं, नारद मुनि के स्टूडेंट हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को इच्छा होती है अपने गुरु के बारे में सुनने की, तो व्यासदेव को भी इच्छा हुई। तो व्यासदेव ने पूछा कि ओ नारद मुनि, आप बताइए उनके जाने के बाद क्या हुआ, जब ये भक्ति वेदांत चले गए उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ, कैसे आपने अपना जीवन व्यतीत किया और उनसे दीक्षित होने के बाद अपने अपना अपना जीवन आपने कैसे पास किया और अभी आपका जो शरीर है ये कैसे आपको प्राप्त हुआ और ये शरीर आपका इतना महान है कि आपने ब्रह्मा के पिछले दिन में जो हुआ था वो भी आप अभी तक नहीं भूले हैं। तो व्यासदेव को अचरज होता है कि समय के प्रभाव से व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, परंतु ऐसा कैसे है कि ब्रह्मा के पिछले दिन में आपके साथ ये घटना हुई थी अभी तक आपको याद है। तो ये सब प्रश्न वो पूछते हैं अपने गुरु से और फिर नारद मुनि आगे की स्टोरी सुनाना चालू करते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि उन भक्ति वेदांत के जाने के बाद उन्होंने उनकी भक्ति चल रही थी, परंतु एक दिन दैव योग से ऐसा होता है कि उनकी माँ को, जब वो माँ रात में दूध निकालने के लिए जाते हैं तो एक सांप उनकी माँ को काट लेता है और उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था नारद मुनि की लाइफ का। कई लोग सोचते हैं कि ये भगवान ने इस प्रकार से क्यों किया नारद मुनि के लिए, परंतु नारद मुनि भागवत में लिखते हैं कि मैंने इसको भगवान की कृपा समझा, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो भी इतनी ज्ञानवान नहीं थी तो वो भी भक्ति ठीक से नहीं कर पाती थी और मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी, तो अगर मेरी माँ रहती तो मैं कभी भी संन्यास स्वीकार नहीं कर पाता। तो भगवान ने इस प्रकार से आयोजन किया कि उनकी माँ को, उनकी माँ का ये शरीर खत्म करके उनको नया शरीर प्रदान किया जिससे वो अच्छे से भक्ति कर सके और मेरी माँ की मृत्यु के बाद फिर मैं भी भक्ति में पूरी तरह से लग गया, घर छोड़ के मैं चला गया। तो नारद मुनि इसको एक कृपा के जैसा स्वीकार करते हैं, परंतु इस प्रकार की कृपा भगवान बहुत एडवांस भक्तों के साथ करते हैं, सभी के साथ नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनको भी भक्ति में बहुत समस्या थी, उनकी पत्नी भी फेवरेबल नहीं थी और उनकी सोसाइटी के लोग भी उनको बहुत परेशान करते थे, मारपीट की भी नौबत आ जाती थी। तो उनकी दीक्षा हुई, उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको एक लेटर लिखा था, उस लेटर में प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान इस प्रकार से करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर समय पे भक्ति नहीं कर पा रहा है तो भगवान उसके लिए अरेंज करते हैं कोई दूसरी जगह पे, दूसरे सर्कमस्टेंस, दूसरी स्थिति को अरेंज करते हैं और फिर उस स्थिति में वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो उन प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो वो उनके शिष्य की मृत्यु हुई और वो ऑब्वियसली एक वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे, अगली बार भक्ति करेंगे। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी इतनी दुखी हुई और वो भक्तों के संपर्क में आई तो पत्नी भी भक्त बन गई। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी की भी भक्ति चालू हो गई और ये पति दूसरे शरीर में भक्ति करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान अरेंज करते हैं किस प्रकार से किस व्यक्ति को भक्ति में लगाना है। तो नारद मुनि की माँ की मृत्यु होने के बाद नारद मुनि ने इसको भगवान की कृपा के जैसा समझा और उस समय नारद मुनि की कोई ऐसा उनको एक्सपीरियंस नहीं था देश विदेश में जाने का, परंतु नारद मुनि ने तुरंत घर छोड़ दिया और उत्तर की दिशा में चले गए। पहले के समय में सामान्यतः लोग उत्तर की दिशा में जाते थे क्योंकि उनको पता था उत्तर में हिमालय है, तो उत्तर की दिशा में चले जाते थे। और नारद मुनि बहुत सारे सिटी, गांव और फार्म, फॉरेस्ट, माउंटेन, घाटी सब जगह से निकल के जाते हैं। तो रूपा जी बताते हैं कि ब्रह्मा के पिछले दिन में भी इसी तरह से टेक्नोलॉजी था, इसी तरह से गांव थे, सिटी थी, सब कुछ था। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी अभी हमने ये सब डेवलप किया है, जब भी सृष्टि होती है तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ब्रह्मा के पिछले दिन में भी उसी प्रकार से सिटी थी, गांव थी, जैसा अभी सिटी और गांव दिखाई देते हैं। नारद मुनि ने सबको पार किया और फिर पार करने के बाद एक बहुत भयानक जंगल के अंदर प्रवेश किया और ये जंगल में बहुत सारे सांप थे, अलग अलग भयंकर जीव थे। और नारद मुनि चूंकि छोटे बालक थे तो उनको बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी, तो जब वो वहां पे आए उन्होंने झील में से पानी पिया और अपने आप को रिफ्रेश करके एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। जैसे जैसे उनको उनके गुरुओं ने सिखाया था उस प्रकार से वो ध्यान करने लगे और जैसे ही उन्होंने भगवान पे ध्यान करना चालू किया भगवान के दर्शन उनको होना चालू हो गए। भगवान के दर्शन होते होते उनके अंतरात्मा में, उनके हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान के दर्शन से उनके आंसू आने लगे और भगवान कृष्ण तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। और नारद मुनि बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के सारे अंग सचेत हो गए हों और भगवान को देख रहे हों। और भगवान का इस प्रकार से रूप देख के नारद मुनि को बहुत संतुष्टि की प्राप्ति होती है। वो बताते हैं कि ऐसी संतुष्टि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। पर कुछ ही समय के लिए भगवान का यह रूप दिखाई दिया, उसके बाद ये रूप गायब हो गया। तो नारद मुनि एकदम से एजिटेट हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। और फिर से वो ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं परंतु उनको फिर से भगवान के दर्शन नहीं होते। तो जब इस प्रकार से वो भगवान को देखने का सिंसियर प्रयास करते हैं और भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान इनविजिबल रहते रहते हुए बोलते हैं उनका दुख कम करने के लिए कि हे नारद, इस जन्म में अभी आप मेरा और दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि जो पूरी तरह से भौतिक भौतिक संसार से मुक्त नहीं होता है वो मेरा दर्शन नहीं कर पाता है। मैंने अभी आपको जो दर्शन दिया वो केवल इसलिए दिया जिससे आप मुझे देखने के लिए आपकी उत्कंठा को और ज्यादा बढ़ा सके, इसलिए मैंने आपको ये दर्शन दिया है। सामान्यतः ये दर्शन किसी को भी नहीं मिलता है। तो ये नारद मुनि के ऊपर स्पेशल कृपा थी भगवान की, उनको कुछ मोमेंट के लिए दर्शन दिए। जैसे क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कोई मूवी आती है तो उसका ट्रेलर पहले आता है और ट्रेलर इतना अच्छा बनाते हैं कि उस ट्रेलर को देख के लोग मूवी देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने ट्रेलर दिखाया नारद मुनि को, कुछ सेकंड के लिए अपना दर्शन दिया, उसके बाद उनसे बोला कि आप भक्ति करिए और जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तो आप मेरे धाम को प्राप्त होंगे, आपको सच्चिदानंद स्वरूप भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने नारद मुनि को बोल के फिर अदृश्य हो जाते हैं। और नारद मुनि बताते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार से बोलना बंद किया तो मुझे बहुत कृतज्ञता फील होती है और मैंने भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद मैं इस धरती पर घूमने लगा पूरी तरह से संतुष्ट होके। और किसी भी सोशल चीजों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, भगवान के नाम का जप करते करते अपनी वीणा बजाते बजाते पूरी धरती पर घूमने लगे। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे उनका शरीर जब पुराना हुआ और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद नारद मुनि ने तुरंत एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया। और यह आध्यात्मिक शरीर जब ब्रह्मा का दिन खत्म हुआ तो सारे के सारे जीव गर्भोदकशायी विष्णु के पास चले जाते हैं। तो उस समय नारद मुनि गर्भोदकशायी विष्णु के शरीर के अंदर गए और जब ब्रह्मा का अगला दिन चालू हुआ तो नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। नारद मुनि के साथ साथ और भी बड़े बड़े ऋषि जन्म लेते हैं, परंतु नारद मुनि इस बार आध्यात्मिक रूप में जन्म लेते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप में जन्म लेते हैं, आध्यात्मिक शरीर में जन्म लेते हैं। और तब से नारद मुनि भगवान कृष्ण के बारे में पूरे संसार में बताते जाते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि इस रूप में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, भौतिक संसार से लेकर आध्यात्मिक संसार में किसी भी जगह पर नारद मुनि को जाने का फुल परमिशन है नारद मुनि की भक्ति के कारण। इस प्रकार फिर नारद मुनि बताते हैं कि हे व्यासदेव, इसलिए मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि इस संसार में जो जीव हैं, अगर उनको संसार के भव सागर को पार करना है तो उनको भगवान के नाम का जप और भगवान की लीलाओं का श्रवण, इन दोनों कार्यों को करना होगा। ग्लोरीफाई द नेम एंड फेम, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन। अगर कोई ये करेगा तो वो इस संसार के भव सागर से बहुत श्योरली निकल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में आता है हरे नामानु कीर्तनम, इस तरह से ये श्लोक है। पूरा श्लोक मुझे उतना याद नहीं आ रहा है कि वो श्लोक में क्या आता है। एतद्ध्यातो चित्तानां मात्रस्पर्शे छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम, कि भगवान हरि की वाणी, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि की लीलाओं के द्वारा भव सिंधु, ये संसार जो भव सागर है उसको निश्चित रूप से पार किया जा सकता है। और इस प्रकार से भगवान की पवित्र सेवा को प्राप्त करके व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। इतना बोलने के बाद श्री नारद मुनि वहां से प्रस्थान करते हैं और अपनी वीणा बजाते हुए वो पूरे संसार में अलग अलग जगह पे जाते हैं और लोगों को भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। और नारद मुनि के जाने के बाद फिर श्री व्यासदेव सरस्वती नदी के पश्चिम किनारे पर बैठते हैं और सरस्वती नदी के जल को स्पर्श करके भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं और उस ध्यान में श्री व्यासदेव भगवान के दर्शन करते हैं और साथ साथ भगवान के पीछे बैकग्राउंड में माया शक्ति का भी दर्शन करते हैं। उससे उनको पता चलता है कि माया शक्ति भगवान के पूरी तरह से नियंत्रण में है। अपश्यन पुरुषन पूर्वम मायाम चतदपाश्रयम, भगवान के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि भगवान के कंट्रोल में माया शक्ति पूरी तरह से है और साथ साथ जब इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं तो श्री व्यासदेव का जो भी इल्यूजन, जो भी भ्रम होता है वो खत्म हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि भक्ति योग के द्वारा लोगों को भगवान के पास लाया जा सकता है। सामान्यतः लोग अज्ञानी होते हैं इसलिए भक्ति योग को नहीं जानते हैं, इसलिए चक्वे शाश्वत संहिता, इसलिए श्री व्यासदेव भागवत का निर्माण करते हैं और केवल इस भागवत पुराण को सुनने से ही भगवान के प्रति शुद्ध प्रेममय भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति शोक मोह और भय, इन तीनों वस्तुओं से मुक्त हो सकता है। शोक मोह भय आपह, इस तरह से श्लोक में आता है कि केवल भागवत श्रवण करने से व्यक्ति के शोक मोह और भय खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर जब वो भगवान को समाधि में देखते हैं तो देखने के बाद फिर भगवान की लीलाओं को देखते हैं, उसके बाद फिर वो लीलाओं का वर्णन करते हैं और भागवत पुराण को लिखना चालू करते हैं। ओके, इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज के जन्म के पहले के घटनाक्रम थे और किस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और किस तरह से परीक्षित महाराज को साप मिला और फिर श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, सातवां अध्याय स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कैंटो का सातवां अध्याय कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल इसी टाइम पे मिलते हैं। 7:30 पे, फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर। आप लोग भी इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, उनकी समरी पढ़ सकते हैं अपनी पुस्तक में से, जिससे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कल हम ट्राई करेंगे सातवां अध्याय, आठवां अध्याय और नौवां अध्याय कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, तीन अध्याय अगर कंप्लीट हो जाएंगे। एक प्रश्न आया है कि भगवान ने नारद मुनि को बोला कि अभी भी आप परफेक्ट नहीं है भक्ति के लिए, दैट मीन्स नारद जी उस समय भी इम्परफेक्ट थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्परफेक्ट थे, बट भगवान बताते हैं कि भगवान उसमें लिखते हैं कि जब तक किसी का मटेरियल कंटेमिनेशन पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हो सकता है, तब तक वो मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स उस समय नारद मुनि का मटेरियल बॉडी भी था, क्योंकि भौतिक शरीर भी अपने आप में एक कंटेमिनेशन है, तो भौतिक शरीर होने से उससे संबंधित अनर्थ भी कुछ कुछ अवस्था में होते हैं, और वो अवस्था जब व्यक्ति भौतिक शरीर को त्याग करता है तो ऑटोमेटिकली भौतिक शरीर के साथ साथ के अनर्थ चले जाते हैं। इसलिए सिद्धि में भी आप देखते हैं दो प्रकार की सिद्धि होती है, स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि। स्वरूप सिद्धि मतलब वो समझ जाता है कि वो आत्मा है, परंतु जब वो भौतिक शरीर त्याग के आध्यात्मिक शरीर धारण करता है तब वो पूरी तरह से सिद्ध होता है। तो वो कहले का तात्पर्य है, उसका ये मतलब नहीं कि नारद मुनि इम्परफेक्ट थे, परंतु थोड़ा सा कुछ बाकी था। ओके, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।